भारत की सुप्रीम कोर्ट धारा 377 के मामले में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की सहमति की संभावना बहुत कम होती है। उल्लेखनीय है कि 2009 में दिल्ली की हाई कोर्ट ने धारा 377 के संबंध में समलैंगिक यौन संबंधों को डीक्रिमिनलाइज करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज किया था। तो इस गंभीर विषय पर और जानकारी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील डॉक्टर सूरत सिंह से बात की।
पल्लवी जी, धारा 377 इंडियन पीनल कोड के अनुसार कोई भी अप्राकृतिक संबंध अगर है, यानी पुरुष का पुरुष के बीच या स्त्री का स्त्री के बीच या एनिमल्स के साथ, तो वो जो है पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए या कम से कम 10 साल की सजा के लिए। इसके लिए एक पिटीशन डाली गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में ये कहा कि अगर कंसल्टिंग अडल्ट हैं, दो लोग अडल्ट हैं और अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो ये उनका राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी है, इसमें कोर्ट को या गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके अगेंस्ट अपील डाली गई सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि नहीं, 377 का जो प्रोविजन है वो ठीक है और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इसको डीक्रिमिनलाइज किया है वो गलत है, यानी ये कानून बरकरार रहेगा। उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाली गई जो डिसमिस हो गई। रिव्यू पिटीशन जब होती है तो फिर क्यूरेटिव डाली जाती है 5 जजेस के सामने, तो वो क्यूरिटी पिटीशन अब जब आई 3 जजेस के सामने, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के प्राइवेट लाइफ से राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन सब से संबंधित है और मूलभूत हमारे जो अधिकार हैं उनको प्रभावित करता है, तो इसको एक संविधान बेंच यानी 5 जजेस की बेंच को रेफर किया जाना चाहिए। तो इनफैक्ट ये बहुत जरूरी था और इसमें माननीय चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि इम्पोर्टेंट मामले जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किए जाए। वरना पल्लवी जी, होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे 25 से भी ज्यादा जजेस हैं, दो दो जजेस की बेंच बैठती हैं, अमेरिका में सारे जजेस एक साथ बैठते हैं, तो जो मेजोरिटी करते हैं वो लॉ बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दो जजेस कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगली बेंच में बैठे हुए दो जजेस उसी विषय पे कुछ और डिसाइड कर रहे हैं, तो बड़ा इनकॉन्सिस्टेंट लॉ हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट मामलों पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस की डिसाइड करे ताकि लॉ सेटल हो जाए, तो यही यहाँ किया जा रहा है। तो मेरी इसमें स्टैंड ये है कि चाहे आप सहमत हो या ना सहमत हो समलिंगिक संबंधों पे, लेकिन ये व्यक्ति का अपना मामला है, उसको सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए, यानी इसमें आदमी के पास चॉइस होनी चाहिए, क्या व्यक्ति क्या सोचता है ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, मैं अपनी सोच दूसरों पे लादू नहीं, ये जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो क्योंकि अगर ये क्रिमिनल रखा गया तो इसमें पुलिस को पावर मिलती है, इसके मतलब पुलिस आपके बेडरूम में आके चेक कर सकती है, तो इस तरह की पावर अगर पुलिस को इंडिया में दी जाती है तो कुछ अपवादों को छोड़ के ज्यादातर उसका दुरुपयोग होता है, तो इसलिए इससे हमारी लिबर्टी का हनन होगा। तो इसलिए हमारे मत में जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था वो सही था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से भी उम्मीद की जाती है कि सारी बातें सुनने के बाद इसके जो मुख्य पहलू हैं वो है कि मानवीय स्वतंत्रता, इसकी जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि बच्चों का किसी तरह से मिसयूज ना हो, उसके लिए पहले से ही नया एक लॉ आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो अब 370 की जरूरत नहीं है, तो 370 को खत्म किया जाना चाहिए और लोगों के जो मूलभूत अधिकार है उनका सम्मान किया जाना चाहिए।
जी सूरज सिंह जी, बस ये बताइए कि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है बहुत कम मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सेप्ट करता है, और कई लोग ये मान रहे हैं कि ये
कर लिया गया है, इसमें कर लिया गया है
जी
पल्लवी जी, उसमें रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद क्यूरेटिव होती है और क्यूरेटिव वहीं डिसमिस हो जाती है, वो फिर कोर्ट के सामने नहीं आती है, कोर्ट के सामने तभी आती है जब क्यूरिटी पिटीशन को ठीक समझा जाता है। तो ये 3 जजेस के सामने आई और अब कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये तो मानिए कि क्यूरिटी पिटीशन अब सुनी जाएगी, जो मुश्किल से 100 में से एक केस में से होता है, तो लेकिन ये वो एक केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इट रेजेस अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो जो है इसलिए इसको सुना जाना चाहिए।
जी एक आखिरी सवाल सूरज जी कि अब ये अगर प्रक्रिया की बात करें तो आपके अनुसार कितना वक्त लगेगा अब इसकी सुनवाई में?
मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये मामला 1 से 2 साल के बीच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत बिजी होते हैं, 70-70, 80-80 केस एक दिन में होते हैं, तो इसलिए टाइम 5 जजेस निकालना मुश्किल होता है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये जल्दी से जल्दी सुना जाएगा। मैं इसका समय काल से कम एक साल लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के बीच ये हो जाएगा।
वहीं हमने मिस्टर गे इंडिया 2013 नोलन ल्यूस से संपर्क साधा और पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं।
पल्लवी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू हो चुकी है सेक्शन 377 के बारे में है, इट इज नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स इन द कोर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, बिकॉज आई थिंक द फैक्ट दैट इट इज कम योर ये जगह तक आ चुकी है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक मिस्टर शशि थरूर एंड यू नो द सिटीजंस हु आर कंसर्न्ड अबाउट democracy, about equal rights, hamari desh ki pragati. You know, it is just a natural course of things for us to have reached here. 2013 mein jo recriminalization hui thi homosexuality ki, I had a strong feeling then that that was just temporary, that we would come to this place. I'm sure in a matter of time, we will have equal rights for irrespective of whether you're gay, homosexual, you're heterosexual, you're bisexual, or you're transgender. We will have equal rights for everyone. This issue will definitely move forward. Haan, ye issue to we will get equal rights eventually. Kyunki India is facing pressure from the rest of the world right now about the injustice that this issue has brought about. Also, I also believe that if it doesn't matter who the government is, agar hamare citizens, agar hamara, as long as our citizens are vigilant to observe that, you know, justice is granted in all cases, I don't think it is a call of maybe the Supreme Court or even the government. We will get, you know, equal rights in any case. There is a saying in Hindi. Hindi mein ye kahawat hai, jaisi praja, waisa raja. I think that is very applicable in this case.